युविका बहाना बनाकर इशिका को जैसे तैसे करके माया के घर से ले आई था। वो इशिका को लेकर तरुण के ऑफिस पहुंची थी। इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि युविका उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। युविका उसे लेकर सीधा तरुण के ऑफिस के आगे पहुंची और उसने एक झटके में उसके केबिन का दरवाज़ा खोला। सामने का दृश्य देखकर इशिका और युविका दोनों की आंखें फटी रह गई थीं। ऑफिस के सोफे पर तरुण इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि के साथ था और वे दोनों अच्छी पोजिशन में तो बिल्कुल नहीं थे। कमरे में रश्मि की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, तरुण और रश्मि हड़बड़ाकर अपने कपड़े सही करने लगे। दोनों ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ गए थे। अचानक सामने इशिका और युविका को देखकर तरुण बुरी तरह घबरा गया। युविका ने गुस्से भरी निगाहों से तरुण की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाकर कहा, बस तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकता है। ये तुम्हारी पीठ पीछे रंगरेलियां मना रहा है, इसीलिए उसने तुम्हारा ऑफिस आना बंद करवाया था। उस वक्त मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इशिका ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहती उससे पहले ही तरुण जल्दी से उसके पास आया और अपने दोनों हाथों से इशिका को पकड़ते हुए प्यार से बोला, ईशानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम देख रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इशिका की जगह वहां पर ईशानी होती तो शायद तरुण के बहकावे में आ जाती या फिर रूही के लिए वो शांत रहने का दिखावा करती, लेकिन वो ईशानी नहीं, इशिका थी। इशिका ने तरुण के दोनों हाथों को झटक दिया और उसे घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, अब समझाने जैसा कुछ नहीं रहा है। मैं तुम्हें ब्लाइंड नजर आ रही हूँ, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम बोल रहे थे ना कि इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हो। लगता है मेरे ऑफिस आने से पहले तुम यहाँ ये समझाने के लिए लाए थे कि मेरे सामने ये तुमसे दूर रहने का दिखावा करे, ताकि मुझे शक ना हो। क्यों, ऐसा ही था ना? बोलते हुए इशिका गुस्से में रश्मि की तरफ देखने लगी। रश्मि की नजरें झुक गई थीं। इशिका ने उनके बिना कुछ कहे ही उन्हें पकड़ लिया था। तरुण यहाँ रश्मि को समझाने के लिए ही लाया था, ताकि एक हफ्ते बाद जब इशिका ऑफिस आए तो वो उसे इग्नोर करने का दिखावा करे। उनका इस तरह ऑफिस के केबिन में इंटीमेट होना कोई नई बात नहीं थी। वैसे भी तरुण के ऑफिस में रश्मि की परमिशन के बिना कोई नहीं आता था। ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से ज्यादा एम्प्लॉयज को भी हायर नहीं किया गया था। रश्मि कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रही, फिर उसने अपनी नज़र ऊपर की और बेशर्मी से कहा, हाँ तो कौन सी नई बात है? जब तुम्हें सब सच पता ही है तो फिर तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बोलते हुए रश्मि तरुण के पास गई और उसके हाथ को पकड़ लिया। वो आगे बोली, अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी, तो अपना ये बिचारी जैसा चेहरा लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी तरुण मुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रश्मि के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर तरुण चौंक गया था। इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था। उसने रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि ने सिर हिलाकर कहा, सोचा था तुम्हें सरप्राइज देकर सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, लेकिन आज ऑफिस आने पर तुम एक नया ही ड्रामा लेकर बैठ गए। तुम्हारी पत्नी फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। उसके सामने हमें ये दिखावा करना है कि हम पिछले कई महीनों से एक दूसरे से दूर हैं। सॉरी टू से, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। शादी मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को नाम देना होगा और उम्र भर मेरे खर्चे उठाने होंगे। तरुण ने गहरी सांस ली और फिर इशिका की तरफ देखकर कहा, ईशानी, अभी इसी वक्त घर जाओ, हम बाकी की बातें वहां पर करेंगे। अब बात करने जैसा कुछ नहीं रहा है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, इशिका ने भौहें उठाकर पूरी सख्ती से कहा। इशिका इतना बोल्ड होकर जवाब देगी ये वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था। युविका के चेहरे पर प्राउड स्माइल थी कि फाइनली उसकी दोस्त ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। युविका ने इशिका का कंधा सहलाकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। वहीं इशिका के तलाक मांगने पर तरुण पागलों की तरह हंसने लगा था। युविका ने उसे देखकर सिर हिलाकर कहा, लगता है सदमे से पागल हो गया है, खुद तो कुछ करता नहीं है, पत्नी की कंपनी के भरोसे बैठा हुआ था और तलाक के बाद अब वो भी छिन जाएगी। युविका की बात सुनकर तरुण ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, पागल मैं नहीं, ये हो गई है जो तलाक मांग रही है। और कौन सी कंपनी की बात कर रही हो तुम? ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, घर का खर्च कैसे चल रहा है ये मैं ही जानता हूँ। ले जाओ कंपनी और अपनी बेटी को भी, लेकिन जिन लोगों को मैंने मुश्किल से संभाल कर रखा है वे तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। इशिका हैरानी से तरुण की तरफ देखने लगी। पिछले कई दिनों से वो उनके घर पर रह रही थी, तो उसने चुपके से ईशानी की कंपनी का डेटा चेक करवाया था। कंपनी किसी भी तरह से घाटे में नहीं चल रही थी। तरुण न जाने क्यों सबको झूठ बोल रहा था। हाँ, वो एक ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, पर किसी तरह का नुकसान भी नहीं झेल रही थी। इशिका के हैरानी का गलत मतलब निकालते हुए तरुण ने कहा, अब तुम्हारी आंखें बड़ी क्यों हो गईं? सुनकर झटका लगाना। अब ये सती सावित्री और पतिव्रता होने का दिखावा घर पर जाकर करना। शाम को मैं रश्मि को लेकर घर आ रहा हूँ। तुमने अच्छी कुकिंग करना सीख ली है तो हमारे लिए अच्छा सा डिनर तैयार करके रखना। वहां बैठकर बात करेंगे कि आगे क्या करना है। अब युविका और इशिका दोनों को ही समझ आ गया था कि तरुण से ईशानी तलाक क्यों नहीं ले पा रही थी। शायद वो पहले भी इसी तरह कंपनी का घाटा दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता था। ये बात नहीं थी कि इशिका के पास पैसे नहीं थे या वो ईशानी की कंपनी को बचा नहीं सकती थी, पर फिलहाल के लिए वो दुनिया के लिए मर चुकी थी। इशिका खुद से इतने पैसे निकालकर तरुण के मुंह पर नहीं मार सकती थी। उसे इसके लिए दिशांग से भी बात करनी जरूरी थी। ऊपर से वो ये भी नहीं जानती थी कि तरुण ने कंपनी पर कितना कर्ज चढ़ा रखा था। अचानक इशिका के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। वो दूसरी तरफ पलटने लगी, तभी युविका ने उसका हाथ पकड़ा और आंखों ही आंखों में इशिका को वहां पर रुकने का इशारा किया। युविका की इस हरकत पर तरुण ने गुस्से में कहा, मैं पहले ही जानता था ये लड़की अगर हमारी जिंदगी में आई है तो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। तुम मेरे सामने एक झूठा प्रोजेक्ट लेकर आई ताकि इशिका को ऑफिस ला सको और मेरे और रश्मि के रिश्ते का सच सामने लाकर हमारे बीच दरार डाल सको। यही प्लान था ना तुम्हारा? कंग्रेचुलेशंस, तुम अपने प्लान में कामयाब तो हो गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी ये सो कॉल्ड दोस्त मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। सो ग्रेट, अब तो मुझे इसके सामने अच्छा पति होने का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। अब दोनों निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, वही तुम दोनों को धक्की मारकर निकालेगी। तरुण उन दोनों से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। युविका ने एक सख्त निगाह तरुण और रश्मि की तरफ डाली। उन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। कुछ पल रुककर अचानक युविका ने कोल्ड वॉइस में कहा, कितने पैसों का कर्ज है? क्या? तरुण ने हड़बड़ाकर पूछा। कान खराब हो गए हैं क्या तुम्हारे? तुम्हारा दिमाग और कैरेक्टर तो पहले से ही हिला हुआ था। मैं पूछ रही हूँ इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, युविका ने काफी बदतमीजी से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम अब इसका कर्ज चुकाओगी? ईशानी तो बहुत खुददार बनती है, वो तुमसे कभी पैसे नहीं लेगी, तरुण ने ईशानी का मजाक बनाते हुए कहा। इशिका भी तरुण की बात से सहमत थी। वो ईशानी की इच्छा का मान रखना चाहती थी। वैसे भी ईशानी उसकी बहन थी, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसकी और उसकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे, उनकी कंपनी को एक अच्छा भविष्य दे।
इशिका ने युविका को मना करना चाहा, लेकिन युविका ने उसके कुछ कहने से पहले ही सख्ती से कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी, इस बार बीच में मत बोलना ईशानी, वरना शायद सच में हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। उसके बाद युविका ने फिर से तरुण का रुख किया और भौहें उठाकर कहा, तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ या फिर मुझे कंपनी का डेटा निकलवाना होगा, पता तो चले कि आखिर अंदर ही अंदर क्या घपला कर रहे हो। डेटा बाहर निकलवाने की बात सुनकर तरुण हल्का घबरा गया था। अगर डेटा सामने आता तो उसका सच भी सामने आ सकता था। कंपनी के कर्ज के नाम पर उसके पास अच्छा मौका था, जब वो युविका से अच्छी खासी रकम वसूल कर सकता था। तरुण ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो इस कंपनी के ऊपर पूरा 150 करोड़ का कर्ज है, चुका पाओगी? तरुण की बात सुनकर युविका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, 150 करोड़ की तो ये कंपनी ही नहीं है और इस पर तुमने इतना कर्ज उठा रखा है। खैर, जितना झूठ बोलना है बोल सकते हो, तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे और तुम्हारे सो कॉल्ड कर्ज के पैसे भी मैं चुका दूंगी। पर अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो एक बात याद रखना, कभी जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। और वन मोर थिंग, अब मेरी दोस्त तुम्हारे घर पर कदम भी नहीं रखेगी, रहो अपनी यूजलेस गर्लफ्रेंड के साथ, मैं भी देखती हूँ पैसे जाने के बाद कितने दिन तक ये तुम्हारा साथ देती है। तरुण को अच्छा खासा सुनने के बाद युविका इशिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। तरुण के सामने इशिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर निकलते ही इशिका ने युविका से कहा, तुम अच्छे से जानती हो वो झूठ बोल रहा है, कंपनी पर इतना कर्ज नहीं है, हमने उसे टाइम दे दिया तो वो किसी न किसी से पैसे उधार लेकर कर्ज बढ़ाने की कोशिश करेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि वो कोई स्कैम करे और पकड़ा जाए, फिर तुम्हें तलाक लेने में दिक्कत ना हो। चिंता मत करो, इस घटिया आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए एक कदम तुमने बढ़ाया है तो बाकी का रास्ता सीढ़ी बनाकर मैं पार करवाऊंगी, बस अपनी दोस्त पर यकीन रखना, युविका ने जवाब दिया। वो इशिका के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थी। कंपनी से बाहर आते ही युविका ने गहरी सांस ली और इशिका के गले लग गई थी। वो इमोशनल हो रही थी। उसने अपने जज्बातों को काबू करके भरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर इसमें इतना टाइम लग गया। मेरा यकीन मानो, अगर उस वक्त तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया होता या इसके कहने पर दोस्ती खत्म नहीं की होती तो तुम दोनों का ये नाम का रिश्ता कब का खत्म हो जाता। इशिका ने युविका की पीठ सहलाई और कहा, कोई बात नहीं, अब इससे अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी। युविका उससे अलग हुई, वो इशिका के लिए खुश थी। युविका ने फिर इशिका से कहा, अच्छा अब तुम उसके पास नहीं जाओगी, शाम को हम रूही को स्कूल से पिक कर लेंगे, तुम मेरे घर पर चलकर मेरे यहाँ रहोगी। लेकिन ये अजीब नहीं हो जाएगा? इशिका ने हिचकिचाकर कहा। कुछ अजीब नहीं होगा, और याद है ना, मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हम दोनों साथ हैं, उन्हें भी तुम दोनों के तलाक का पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे, युविका ने एक्साइटेड होकर कहा। युविका इशिका को अपने साथ लेकर निकल ही रही थी कि उसके पास किसी का कॉल आया। कॉल रिसीव करने के बाद वो इशिका से बोली, अच्छा इशिका, ऐसा करो तुम गाड़ी लेकर घर चली जाओ, मैं कैब से चली जाती हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा। अरे नहीं, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ और मुझे इस वक्त तरुण के घर ही जाना होगा, मुझे अपना और रूही का सामान भी तो लाना है, इशिका ने जवाब दिया। आर यू श्योर तुम वहां जाना चाहती हो? अब तक तो तरुण ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, कहीं फिर से वे दोनों तुम्हें रोकने की कोशिश ना करें, युविका ने परेशान स्वर में कहा। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी, और मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। हालांकि युविका इशिका को अकेले माया के घर भेजने के पक्ष में नहीं थी, पर इशिका ने उसे सब संभालने का कहा और वहां से टैक्सी लेने के लिए जाने लगी। युविका ने भी ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने भी ईशानी में बदलाव महसूस किए थे, वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी। युविका अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। वहीं इशिका टैक्सी का इंतजार करते हुए रोड पर खड़ी थी, तभी उसके सामने एक गाड़ी आई और उसने उसे अपने अंदर खींच लिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसके मुंह पर टेप लगा दी थी और उसके हाथों को टेप से बांध दिया था ताकि वो शोर ना मचाए। क्या लगता है, इशिका को किसने किडनैप किया होगा? या जो भी है वो इशिका के लिए ना होकर इशाली के लिए आया हो? पढ़कर समीक्षा जरूर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। वैसे आज 200 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं।